समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 MHz। As Divya just mentioned, in today's Parikrama, we have for you a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes, but we'll begin with the news headlines first. Syrian rebel forces take control of capital Damascus amid media reports of President Bashar al-Assad fleeing country to undisclosed location.
गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू टेक पार्ट इन मनामा डायलॉग इन बहरीन दिस आफ्टरनून।
उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू।
इन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया डिफीट इंडिया बाय 10 विकेट्स इन सेकेंड टेस्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एट एडिलेड ओवल, लेवल 5-match series 1-1।
और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया।
Divya, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about Ashtalakshmi Mahotsav conclusion.
खुरुम जेरी। रेशमा, आप सोच रही होंगी कि खुरुम जेरी मैंने आपको क्यों बोला। तो ये मणिपुरी भाषा का एक शब्द है जिसको नमस्कार, हेलो के लिए उपयोग किया जाता है और इसी तरह की नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति के कई आयामों को हम सेलिब्रेट करने के लिए भारत मंडपम में 6 से 8 दिसंबर तक प्रगति मैदान में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया गया। और आइए
तो दिव्या, तुमको भी मेरी तरफ से खुरुम जेरी एंड खुरुम जेरी listeners. The culture of Northeast India is a vibrant tapestry woven with centuries of traditions, diverse languages, rich folklore and breathtaking landscapes. It is a region that holds within its embrace an extraordinary blend of ancient customs and modern progress, where every community, every state has its own unique identity. From the lush tea gardens of Assam to the rolling hills of Mizoram, from the pristine rivers of Manipur to the vibrant festivals of Nagaland, the Northeast is a land that pulses with life, art and heritage.
तो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं उन्हीं को संबोधित करने के लिए ये नाम रखा गया रेशमा, अष्टलक्ष्मी।
yes.
8 राज्य अष्टलक्ष्मी, यानी कि जो भारत की प्रोस्पेरिटी में अपना योगदान देते हैं और 8 लक्ष्मी हैं बेसिकली हमारे लिए। तो इस संस्कृति को भारत मंडपम में प्रगति मैदान में आज इसका समापन हो रहा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का। और महोत्सव ने पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर भी काफी जोर दिया है। क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी, विकास और परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में चल रहा विकास भारत की विकास की कहानी में इसकी रणनीतिक भूमिका को बढ़ाने और व्यापार तथा व्यवसाय के लिए नए अवसर खोलने के लिए इस प्लेटफॉर्म को नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे निवासी हैं उन सब के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि कल्चरल एंड फैशन शो आयोजित किए गए, जिससे कि जिसमें कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के साथ में मूगा सिल्क और एरी सिल्क पर जो काम किया गया है वो तमाम तरीके की कारीगरी और ये सब हस्तशिल्प वगैरह को बहुत अष्टलक्ष्मी अच्छे से दिखाया गया इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान.
एब्सोल्युटली यू राइट. दिस महोत्सव सर्व्स एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द रीजन्स कल्चरल वेल्थ व्हाइल फोकसिंग ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट. द फेस्टिवल हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड एज एन एनुअल इवेंट that continue to honor the diversity and cultural richness of Northeast India, propelling the region towards further economic advancement. The Ashtalakshmi Mahotsav featured a wide array of events showcasing the cultural and economic richness of Northeast India. Over 250 artisans displayed unique handicrafts, handlooms and agri-horti products, including 34 GI-tagged items.
और इसी कार्यक्रम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुभंकर पूर्वी को पेश किया गया. पूर्वी एक छोटी लड़की है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है. एकता और विविधता की प्रतीक पूर्वी इस कार्यक्रम के बाद भी क्षेत्र की विरासत, संस्कृति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती रहेगी.
वाओ. एंड द महोत्सव सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट टू शोकेस दिस वाइब्रेंट प्रोग्रेस सेलिब्रेटिंग द कल्चरल रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया व्हाइल इनवाइटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू सपोर्ट इट्स कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Prime Minister Narendra Modi has lauded the remarkable growth in Northeast states through improved connectivity, digital inclusion, and investment in infrastructure. Mr. Modi today shared an article, Northeast is becoming a key enabler of Viksit Bharat vision, written by Union Minister Jyotiraditya Sindhya on social media platform X. The Prime Minister also lauded the Ashtalakshmi Mahotsav celebrating the Northeast vibrant textile sector, tourism opportunities, and traditional craftsmanship. The three-day Ashtalakshmi Mahotsav being conducted at Bharat Mandapam in New Delhi aims to showcase the beauty, diversity and promise of the 8 states of the region, which include Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura and Sikkim. And over 250 artisans are displaying unique handicrafts, hand looms and agri-horti products. As mentioned earlier, one of our correspondents in fact visited the event.
The last day of the Ashtalakshmi Mahotsav features technical sessions on energy diversification, arts, sports and culture. Panel discussions on the cultural heritage of Northeast states have also been conducted to promote Northeastern legacy across the globe. The visitors are turning in high numbers to discover various handlooms, handicrafts, home decor outlets among others on the last day. Further, to showcase the blend of technology with tradition, mini robotic devices unveiling the insights of different Northeast states have also been installed. The Mahotsav has been named after 8 avatars of Goddess Lakshmi, similar prosperity, wealth, knowledge, dharma, agriculture and other features. It has also featured pavilions dedicated to Northeast India's celebrated Muga and Eri silk, live demonstrations on artisanal crafts and a special focus on the region's geographical indication products. Another mega attraction of the festival has been the Rural Heart Bazaar, which showcases produce and art from 320 farmers and artisans of the region. Talking to Akashvani News, Ministry of Development of Northeastern Region Secretary Chanchal Kumar highlighted,
so this is the first mega event in which all the 8 states together, they have come with us and we have planned this mega show where we are bringing all these different stakeholders, whether they are investors. So for them, we have investor roundtable, we have buyer seller meet, we have 8 different states pavilion in which all the signature products, all the GI tag products, whether it is in agri-horti sector or whether it is in textile sector, all these vendors have come together, they have displayed that. People will have opportunity to see the strength of the Northeastern states in terms of investment potential, in terms of business opportunities, in terms of getting familiarized with the tourism potential of the state, the rich, vibrant traditions of the states, and we are expecting that people from rest of the country, they will get to know Northeast better. This will help us in marketing the product, marketing the traditions of Northeast better with rest of the country and rest of the world. This is an event in which international players and stakeholders have also shown interest, and in fact, Adarniya Pradhan Mantri Ji yesterday mentioned that we should be requesting other ambassadors, other embassies also to come and send their teams to see all these stalls. In fact, we have requested yesterday also in Honorable Prime Minister's event, many foreign dignitaries had come. So this is one event in which we are planning to showcase the strength of Northeast as a growth engine of the country, and this will be a signature event for the rest of the time to come for the future.
An exhibitor named John Pelang from Arunachal Pradesh shared his experience on being part of the 3-day festival.
May stay devotee, artisan Mr. J. जॉन पालेंग। मैं कोरेंग विलेज से बिलोंग करता हूँ, सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से है। हमारा जो अरुणाचल पेविलियन में हम लोग को एग्जीबिशन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और इसमें खाने पीने का हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का सब प्रोडक्ट है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और आई होप आगे वाला समय में भी अच्छा होंगे और कस्टमर का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
The Ashtalakshmi Mahotsav has not just showcased the cultural beauty of the region, but also provided an insight into the indigenous products that have evolved over the years. For Parikrama, with Adarsh Kumar, Bhanu Pratap Singh, Delhi.
और इस तरह से अष्टलक्ष्मी महोत्सव सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जो एक क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर भारत के आशाजनक भविष्य की झलक पेश करता है। परंपरा, संस्कृति और आर्थिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ये त्यौहार भारत के समग्र विकास पर स्थायी प्रभाव डालने का वादा करता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो परिक्रमा में अब चलते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश में धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधानों के सुलभ अध्ययन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 413 नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने 2875 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। ये योजना आगामी 3 वर्षों में पूरी की जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर निगमों में 1500 बैठक क्षमता और 5 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में 1000 बैठक क्षमता वाले एक एक गीता भवन तैयार किए जाएंगे। प्रदेश की 99 नगर पालिका परिषद और 298 नगर परिषद क्षेत्रों में भी क्रमशः 500 और 250 की बैठक क्षमता के साथ साथ एक एक गीता भवन तैयार किए जाएंगे। गीता भवन का निर्माण राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा। नगरीय निकाय पीपीपी मोड पर भी गीता भवन का निर्माण कर सकेंगे। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि प्रत्येक गीता भवन में एक पुस्तकालय होगा, इसमें 3 रीडिंग रूम की व्यवस्था होगी। गीता भवन में ई लाइब्रेरी कक्ष की स्थापना भी की जाएगी। गीता भवन में साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी प्रस्तावित किया गया है। गीता भवन में कैफेटेरिया और स्वल्पाहार गृह की सुविधा भी विकसित की जा सकेगी। खास बात यह है कि प्रदेश में बनाए जा रहे गीता भवन केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगरीय निकाय समुचित स्थान पर व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। नगरीय निकायों में बनाए जाने वाले गीता भवनों में ऑडिटोरियम का प्रावधान भी रखा गया है। इन ऑडिटोरियम में नगरीय निकायों की आबादी के हिसाब से सभागार की बैठक व्यवस्था निर्धारित रहेगी। गीता भवन में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सुलभ पार्किंग व्यवस्था का भी प्रावधान रहेगा। गीता भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहां नागरिकों की पहुंच आसान हो। खास बात यह है कि गीता भवन की डिजाइन में मध्य प्रदेश के विशेष वास्तुशिल्प की झलक भी देखने को मिलेगी। परिक्रमा के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
And from Bhopal, we'll go to Cuttack now. Acting on his promise of prioritizing development of Odisha's tourism potential under the Look East policy, the central government recently announced a comprehensive action plan for nature tourism at Satkosia Tiger Reserve and Hirakund and allocated 199.98 crore rupees for the purpose. Each of the destinations will get 99.99 crore rupees for tourism development projects, and some components of the projects will be implemented in public-private partnership or PPP mode through the Ministry of Tourism's Destination Development Division. 2 tourist spots have been selected by the centre to be developed as iconic tourist destinations of global standards.
Hirakud and Satkosia are among the 40 selected sites from 23 states and union territories that have been approved by the Ministry of Tourism and Culture for development of tourism infrastructure under the Special Assistance to States UTs for Capital Investment SASCI scheme. Built across Mahanadi River, Hirakud Dam is one of the first major multi-purpose river valley projects started in the country after independence. Over the years, the longest earthen dam of the world has emerged as a major tourist destination for its engineering marvel. Hirakud Reservoir and its surrounding areas will be developed into a world-class tourist destination by combining modern infrastructure with natural and cultural assets. To enhance the tourist experience, the ministry plans to develop unique accommodations such as flotel, camping and caravan hybrid parks. Museums and hotels will be built in public-private partnership. On the other hand, Satakosia is known for its biodiversity and a paradise for nature and wildlife lovers. It is the meeting point of two biogeographic regions of the country, the Deccan Peninsula and Eastern Ghats. Pamsar, Tikarpada, Balipur, Bodamur and Kusangor Sitalapalli will be developed as a nature tourism house. These will include visitors plaza, accommodation units, nature interpretation centers, amphitheaters, urban transport, and bird watching towers, among other facilities. The hotel and adventure sports facilities will be set up in PPP mode with an outlay of 20 crores and expected to generate employment opportunity for 800 people. For the projects, the state government will provide land freefall income branches without any cost. Agencies capable of development management and bringing in expertise of world-class tourist assets and experience will be roped in for two projects. The project will be designed for sustainable operations and maintenance to ensure that the tourist experience and services remain safe, attractive and enjoyable for both domestic and foreign visitors. Chief Minister Mohan Charan Majhi thanked Prime Minister Narendra Modi for prioritizing the tourism sector through the SASCI scheme. Odisha is proud to have Hirakud and Satakosia included in the visionary initiative. This project will undoubtedly elevate Odisha's prominence on Bharat's tourism map. Tapan Maharana for Parikrama, Akashvani Katak.
और अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा पूरी अयोध्या नगरी में नए निर्माण और भक्ति तथा आस्था की छाप नजर आ रही है। जल्द ही अयोध्या के मशहूर सुग्रीव किले से राम मंदिर के परकोट तक एक कैनोपी बनाने की तैयारी हो रही है।
अयोध्या राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के इस मार्च के महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। मंदिर परिसर के निर्माण के साथ ही यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए भी राम मंदिर निर्माण समिति विशेष प्रयास कर रही है। समिति की बैठक कल सम्पन्न हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सुग्रीव किला से राम मंदिर के परकोटा तक अब राम दर्शन मार्ग पर जगह जगह स्थायी कैनोपी बनाए जाएंगे और जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही कि रामनवमी से पहले कैनोपी बनकर तैयार हो जाएगा। इस कैनोपी में श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि इसके साथ ही मंदिर के लोअर प्लिंथ पर बन रहे 85 स्टोन के म्यूरल बनाए जाएंगे। इन म्यूरल पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिनका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। इस म्यूरल को फरवरी के बाद श्रद्धालुओं को देखने की सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
And in cricket, Australia defeated India by 10 wickets in the second test match of the Border Gavaskar Trophy at Adelaide Oval. With this win, the hosts have levelled the five-match series 1-1. Chasing only 19 runs on day 3 of the pink ball test, Australia overhauled the mere target for no loss in just 3.2 overs after dismissing India for 175 in their second innings. Earlier in the day, India resumed their play at the overnight score of 128 for 5, losing the remaining 5 wickets for just 47 runs in 12.5 overs. For Indian side, Nitish Kumar Reddy scored the highest 42 runs, while Australian skipper Pat Cummins took a 5 wickets haul. Yesterday, Australia were bundled out for 337 runs in reply to India's 180 runs in their first innings, with the hosts establishing a lead of 157 runs that led to a comfortable victory for them in the pink ball test. And Divya, let's take our listeners on a tour of India's freedom struggle now and recall events that happened on this day.
Today, we pay homage to Bhai Parmanand, adorably called Bhaiji. Bhai Parmanand was an Indian freedom fighter born in Punjab. Since his childhood, Bhai Parmanand was inclined towards national integration as his family was associated with the Arya Samaj movement.
In October 1905, Parmanand visited South Africa and stayed with Mahatma Gandhi as a Vedic missionary. He was sent to the United States to coordinate the attempts by Indians overseas to help free the motherland. He was a founder member of the Ghadar Party. He wrote a book for the Ghadar Party called Tareekh-e-Hind.
When he returned to India, he was arrested in connection with Lahore conspiracy case. He was imprisoned in the cellular jail in Andaman until 1920 and subjected to extreme physical torture. The British King, George V, released him in 1920 as a result of a general amnesty order.
When Gandhiji started a national educational program, Bhai Paramanand was requested to give his full cooperation. Bhagat Singh was one of the students whom Bhai Paramanand had taught. Bhai Paramanand was also a caste abolitionist. He had started a caste elimination movement within Arya Samaj. Paramanand breathed his last on 8th of December 1947.
8th December is the birth anniversary of Amarnath Vidyalankar. Vidyalankar was a social worker and freedom fighter born in pre-partition Punjab in 1901. Vidyalankar was educated at an Arya Samaj educational institution.
After Vidyalankar completed his education, he plunged himself into the non-cooperation movement. When Lala Lajpat Rai founded the Servants of the People Society, Vidyalankar, along with Lal Bahadur Shastri, Balwant Rai Mehta and many others, became life members of the society.
Lala Lajpat Rai gave Vidyalankar the job of teaching history at Lahore National College, where Bhagat Singh and his associates were his students. After the closure of National College, Lala Lajpat Rai sent him to Hisar to assist famine victims in remote areas. In Haryana, he worked in the labour movement and in 1931 was sentenced to 2 years in jail for his editorial on the failure of the Round Table Conferences. He was also imprisoned for 2 years during the Quit India movement. During the communal clashes in 1947, he organized rescue squads for people. We pay tribute to the great son of soil, Amarnath Vidyalankar. Kavi kuch aisi taan
suna. 8th December is also the birth anniversary of Bal Krishna Sharma, Indian freedom activist and a poet of Hindi literature. Born in 1897 in Madhya Pradesh's Shajapur district, he dropped out of college to join the freedom struggle.
In 1917, he came in contact with veteran journalist and editor of Pratap magazine, Ganesh Shankar Vidyarthi. He became the editor of Pratap after the death of Vidyarthi ji in 1931. Sharma had been jailed by the British 6 times between 1921 and 1944, but this had little impact on him and he continued to contribute to the freedom movement. He was nominated to the Constituent Assembly from the United Provinces, now Uttar Pradesh.
Apart from his political work, Bal Krishna Sharma was also a renowned Hindi poet. He wrote poems with Naveen as his pen name. Some of his notable works include Kumkum and Urmila, among others. He was awarded Padma Bhushan for his contribution to the field of literature.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस और इस क्रम में हम सबसे पहले याद करेंगे
यस वील रिमेम्बर हर्बर्ट स्पेंसर ही वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर बायोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट एंड प्रोमिनेंट क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा Spencer developed an all-embracing conception of evolution as the progressive development of the physical world, biological organisms, the human mind, and human culture and societies. Spencer was the single most famous European intellectual in the closing decades of the 19th century. He's best known for the expression survival of the fittest, which he coined in the Principles of Biology in 1864 after reading Charles Darwin's On the Origin of Species.
और रेशमा आज ही भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की पुण्यतिथि है उन्होंने ये पद 31 दिसंबर 2019 को ग्रहण किया था इससे पहले उन्होंने भारतीय थल सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भी काम किया तब उन्हें सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था उरी हमले के बाद सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक पैरा कमांडोज की योजना भी जनरल बिपिन रावत की थी और उन्हें मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने पर 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन के लिए चयनित किया गया था और उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सम्मानों से अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है।
एंड इट्स ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉन विंस्टन ओनो लेनन और जॉन लेनन। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 अक्टूबर 1940। ही वॉज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड पीस एक्टिविस्ट हु गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज द फाउंडर, को लीड वोकलिस्ट एंड रिदम गिटारिस्ट ऑफ द बीटल्स। His songwriting partnership with Paul McCartney remains the most successful in history. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall and the mountain
और अब बात करते हैं जन्मदिवस की। भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता उदय शंकर की आज जयंती है। उदय शंकर भारत के प्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता थे। खास बात यह है कि उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। उनकी प्रस्तुतियां काफी रचनात्मक थीं और उन्होंने यूरोप और भारतीय दोनों नृत्य शैलियों को मिलाकर एक नई शैली की रचना करने का फैसला कर लिया था, जिसे हाई डांस कहा गया। उदय शंकर ने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ जैसे कई नवीन नृत्यों की रचना की और ये सुनते हैं उनका ये। नृत्य के लिए उनके अतुलनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, देशिकोत्तम सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया।
And together with his brother, the sitarist Ravi Shankar, he explored classical and folk dance and created dance dramas that included social comment. That was Uday Shankar, and it's also the birthday of धर्म सिंह देओल। दिव्या
जी, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ धर्मेंद्र का भी आज जन्मदिन है। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपनी मजबूत कदकाठी और एक्शन के लिए ही मैन के नाम से जाने जाते हैं।
यस, ही हैज अपीयर्ड इन अबाउट 306 फिल्म्स, आल्सो नोन एज गरम धर्म इन बॉलीवुड, एंड ही हैड द लुक्स ऑफ अ रियल जेंटलमैन, अ मैस्कुलिन बॉडी, एंड व्हेन इट केम टू एक्टिंग ही कुड लुक गुड इन एनी इमोशन, funny, sad or angry. Phool aur Patthar in 1966, Jugnu in 1973, Raja Jani in 1972 and Loafer in 1973 are all quite remarkable and unforgettable films of Dharmendra.
और धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी, लेकिन उन्हें जो प्रसिद्धि मिली रेशमा वो शोले से मिली। और आइए सुनते हैं शोले का ये उनका डायलॉग।
कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
This was his funny side, and his sensitive side was explored by Hrishikesh Mukherjee in Anupama in 1966 and Satyakam in 1969, which are considered among the best performances of his career.
और धर्मेंद्र अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्माता भी हैं। वर्ष 1983 में धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब और 1995 में छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात फिल्म का निर्माण कर उन्हें बॉलीवुड में पदार्पण कराया। और वर्ष 2007 में अपनी फिल्म में सनी, बॉबी और धर्मेंद्र पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आए। आइए सुनते हैं ये।
मैं जट यमला पगला दीवाना हो रप्पा, इतनी सी बात न जाना के 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 ओ मैनू प्यार कर दी है।
और उन्हीं के साथ जो अभिनेत्री बहुत ही मशहूर रही, शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर का आज 80वां जन्मदिन है। शर्मिला 60 और 70 के दशक की अभिजात वर्ग की नायिका हैं। हिंदी फिल्मों की श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। शर्मिला महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखती हैं और उन्होंने अपने किरदारों के माध्यम से लार्जर देन लाइफ की छवि प्रस्तुत की।
यस, शी अचीव्ड सक्सेस यंग। शी अपीयर्ड इन न्यूमरस बंगाली क्लासिक्स बिफोर मेकिंग द जंप टू हिंदी सिनेमा, व्हिच मेड हर अ लेजेंडरी एक्ट्रेस thanks to her intense films opposite superstar Rajesh Khanna.
और आज भारत की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया शाह का जन्मदिन है. वो 7 बार राष्ट्रीय एकल विजेता, 12 बार युगल विजेता और 4 बार मिश्रित युगल विजेता रही हैं. उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 1980 के दशक में प्रकाश पादुकोण के भारतीय बैडमिंटन के किंग माने जाते थे. वहीं अमी घिया बैडमिंटन की क्वीन कही जाती थी. और इसके साथ ही श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और रेशमा तिवारी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।